Hello, Hare Krishna. Following is a lecture by His Grace Rukmini Krishna Prabhuji on Srimad Bhagavatam, 4th canto, 25th chapter, verse number 22 on 21st of July 2007, and the topic is Use of Intelligence.
सुनासाम सुदतीम बालाम सुकपोलाम वरानाम शाम विन्यस्त कर्णाभ्याम विभ्रतीम कुंडलश्रियम सुनासाम सुदतिं बालाम सुकपोलाम वराननाम संविन्यस्त कर्णाभ्याम विप्रतिं कुंडलश्रियम सुनासाम सुदतिं बालाम सुकपोलाम वराननाम संविन्यस्त कर्णाभ्याम विभ्रतिं कुंडलश्रियम सुनासाम सुदतिं बालाम सुकपोलाम वराननाम संविन्यस्त कर्णाभ्याम विभ्रतिं कुंडलश्रियम
दास अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की सुनासाम अत्यंत सुंदर नाक, सुदते अत्यंत सुंदर दांत, बालाम तरुणी, सुकपोलाम सुंदर मस्तक, वर आननाम सुंदर मुख, सम समान रूप से, विन्यस्त व्यवस्थित, कर्णाभ्याम दोनों कान, विभ्रतेम चमचमाते हुए, कुंडलश्रियम सुंदर कुंडलों बालियों वाले। अनुवाद। उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अतीव सुंदर थे। उसके कान भी समान सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। तात्पर्य, बुद्धि का शरीर इंद्र तृप्ति की वस्तुओं को जो उसे ऊपर से ढके हैं यथा गंध, दृष्टि तथा ध्वनि भोगता है। सुनासाम सुंदर नाक शब्द गंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियों को सूचित करता है। इसी प्रकार स्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है, क्योंकि किसी वस्तु को कुचलकर तथा जीभ से छूकर उसका स्वाद जाना जा सकता है। सुकपोलाम सुंदर मस्तक उस विमल मस्तिष्क मन का सूचक है जो वस्तुओं को उसी रूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती हैं। दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि की ही करामात है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
ओम अज्ञान स्विरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा।
तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। तो चौथे अध्याय का चौथे स्कंध का 25वां अध्याय है और इसका नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। और ये गुणों का वर्णन कौन कर रहे हैं? नारद मुनि जी। किसको कर रहे हैं? प्राचीन परिषद को। तो इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि नारद मुनि जी कितने सक्षम प्रचारक हैं, किस ढंग से राजा प्राचीन भरीषद जो कि कर्म कांडों में पूरी तरह से फंसे हुए थे उनको कैसे वो धीरे धीरे उठाते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि जो एक प्रचारक को धोबी की तरह एक्सपर्ट होना चाहिए। धोबी का मतलब क्या है कि धोबी जिस ढंग से कपड़े धोता है पहले ऊपर उठाता है फिर नीचे पटकता है, तो ऊपर उठा के फिर पटकना, तो इसी ढंग से पहले ऊपर उठा रहे हैं राजा प्राचीन भरीषद को, बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं और फिर देखेंगे बाद में कैसे उनको नीचे पटकेंगे। ऊपर उठा के नीचे पटकते हैं तो सारे के सारी गंदगी बाहर निकलती है। तो ये हमें प्रचारक को देखना चाहिए समय परिस्थिति और काल को देखते हुए। तो पिछले कुछ श्लोकों से वो वर्णन कर रहे हैं कि जीव जो इस भौतिक जगत में आया है भगवान से विमुख होकर और आनंद की खोज में, तो भटक रहा है इधर उधर और कहीं उसको आनंद नहीं मिल रहा, और फिर खोजते खोजते वो हिमालय की दक्षिण दिशा में आता है यानी कि भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में उसने देखा बहुत सुंदर नगर है, तो वो सुंदर नगर की तुलना की गई इस मनुष्य शरीर से, और फिर देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े इमारतें हैं, सुंदर सुंदर भवन हैं, तो वो उसके अंदर सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात और तरह तरह के आभूषण हैं, तो उसकी तुलना की गई उस नगर की राजधानी यानी कि हृदय से। और फिर देवताया कि बड़े अच्छे अच्छे उद्यान हैं, उसमें सुंदर हवा बह रही है, संगीत चल रहा है, तो उसकी तुलना की गई हमारे अंदर काम वासनाओं से और तरह तरह के हम जो रूप स्पर्श गंध इन सब का आस्वादन करना चाहते हैं, रसों के रस श्रृंगार रस से उसकी तुलना की गई। और फिर बताया गया कि उसी उद्यान में एक बहुत ही सुंदर युवती तरुणी दिखाई दी। तो देखिए अगर इन प्रभुपाद के तात्पर्यों को ना पढ़ें और सीधे इन श्लोकों को ही पढ़ें तो कितनी रोमांचक कथा लग रही है। तो जब ये ऐसा वर्णन करेंगे एक सुंदर स्त्री है, सुंदर सा उद्यान है और ऐसे रसों का आस्वादन हो रहा है, तो हम भी देखते हैं जब हम प्रचार करने जाते हैं तो कोई भी श्रोता सोता हुआ दिखाई नहीं देता, सबकी आंखें और कान पूरी खुली रहती हैं, कुछ सुंदर चीज सुनने को मिल रही है। और लेकिन आगे जाके जो नारद मुनि जिसके द्वारा एक कटु संदेश देंगे तब वो संदेश अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पे पिछले कुछ श्लोकों से स्त्री की सुंदरता का वर्णन की गई है, बताया कि उस स्त्री के नाक दांत तथा मस्तक सभी अतीव सुंदर थे, उसके कान भी सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। तो ये स्त्री क्या है, किसकी तुलना की गई इसके? स्त्री बुद्धि से, बुद्धि जो कि अज्ञानता से ढक ली गई हो। तो हम इस जगत में आए हैं, बद्ध जीव इस जगत में आया है कृष्ण से विमुख होकर आनंद प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण से विमुख होकर आनंद प्राप्त करने के लिए जब हम यहाँ पे आते हैं तो वो जो आनंद देने का हमें उत्साह मिलता है और जो हमें आनंद पाने की उम्मीद मिलती है वो एक स्त्री से मिलती है, और स्त्री फिर हमारा मार्ग प्रदर्शन करती है कि कैसे हम इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए एक सुंदर स्त्री की तुलना बुद्धि से की गई है, क्योंकि बुद्धि ही तरह तरह की योजनाएं बनाती है, बुद्धि ही निर्णय लेती है क्या ठीक है क्या गलत है और किस मार्ग में जाकर मुझे आनंद मिलेगा। तो इसलिए एक स्त्री बुद्धि की तुलना सुंदर स्त्री से की गई है, क्योंकि सुंदर स्त्री ही हमारी भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन है। और तभी बोला जाता है संसार में बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज ए वुमेन, और यहाँ पे जो सक्सेसफुल मैन सफल व्यक्ति संसार में उसी को कहा जाता है जिसके पास इंद्र तृप्ति की सारी सुविधाएं हों। तो एक सुंदर स्त्री एक बहुत बड़ा उसके लिए एक मोटिवेशन बनता है, आदमी खूब जो मनुष्य है खूब कार्य करता है खूब मेहनत करता है क्योंकि उसका लक्ष्य है अपने सुंदर स्त्री को संतुष्ट करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं पूरा का पूरा ये भौतिक संसार है ये केवल जीवा और जननेंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए चल रहा है, और जो स्त्री है वो पुरुष की जीवा और जननेंद्रिय को संतुष्ट करने में बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही निपुण होती है। तो पूरा का पूरा संसार हम जो तामझाम देख सकते हैं, बड़े बड़े ट्रैफिक, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े शेयर मार्केट, बड़े बड़े कम्युनिकेशन, बड़े बड़े नेटवर्क, बहुत बड़ा जो भी ये तामझाम हमें भौतिक संसार में दिख रहा है, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी डिग्रियां, एमबीएस, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बड़े कोर्ट, जितना भी ये तामझाम दिख रहा है, इस पूरे तामझाम के पीछे खाली यही उद्देश्य है, जीवा को और जननेन्द्रियों को संतुष्ट करना बस। तो इसलिए जो इसमें सफल हो जाता है उसके पीछे उसका प्रेरक कौन है? एक स्त्री। और उसी ढंग से बुद्धि हमें प्रेरणा देती है कि बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, ये करेंगे तो हमारी इंद्रस्थिति अच्छी होगी, ये नहीं करेंगे तो इंद्रस्थिति खराब होगी। तो इस ढंग से बुद्धि और स्त्री की तुलना की गई है। और इस स्त्री को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। श्रील प्रभुपाद का बहुत ही फेमस कोट रहता है कि वर्क लाइक एन एस टू एंजॉय लाइक ए हॉग, कि मनुष्य कार्य करता है गधे की तरह ताकि वो सुअर की तरह भोग कर सके, बस ये जीवन का उद्देश्य बन गया है। अमेरिका में कहा जाता है वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, मंडे से फ्राइडे खूब काम करो मेहनत करो और सैटरडे संडे पार्टी हार्डर और खूब भोगने का प्रयास करो। लेकिन श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि आनंद हमें मेहनत करने से नहीं मिलेगा, जितनी मर्जी मेहनत कर लें मेहनत करने से आनंद नहीं मिलेगा। जो हम सुख ढूंढ रहे हैं वो केवल मेहनत से नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय में बताया गया है कि आनंद प्राप्त करने के लिए आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। जब तक हम बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करेंगे हम आनंद प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इस श्लोक में और आगे वाले श्लोकों में बुद्धि और इंद्रियों के जो उनका आपस में संयोजन चलता है उसको हमें समझना चाहिए कि बुद्धि और इंद्रियों का आपस में क्या संबंध है और किस तरह से हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए ताकि हम इंद्रियों का सही उपयोग कर सके। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं। बद जीव उनसे विमुख हुआ लेकिन भगवान उनसे विमुख कभी नहीं होते। भगवान हमेशा आतुर रहते हैं कि ये जीव वापस मेरे पास आए। तो भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना इस ढंग से की कि जीव इस भौतिक सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का उपयोग उस ढंग से कर सके ताकि उसका शुद्धिकरण हो। तो भगवान ने जब जीवों को यहां भेजा साथ में उनके ऊपर दो कवरिंग्स, दो आवरण डाल दिए। और दो आवरण क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर है मन, बुद्धि और अहंकार, झूठा अहंकार। और स्थूल शरीर के अंदर है इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो भगवान ने पूरी सृष्टि की और पूरे शरीर की संरचना इस ढंग से की है कि हम प्रत्येक वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा में कर सके। ज्ञान इंद्रियां, देखिए कितना सुंदर नाम है ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों का अर्थ है ऐसी इंद्रियां जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। और ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है ज्ञानम तो एकात्म दर्शनम। भागवतम के एकादश स्कंध में बताया गया है कि ज्ञान का अर्थ है हम हर जगह कृष्ण का दर्शन कर सकें। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ज्ञान की प्रतिकाष्ठा ये है कि हम हर वस्तु में कृष्ण को देख सकें। वासुदेवम सर्वमिति, ज्ञानी पुरुष वो होगा जो जानता है कि इस सृष्टि का एक अणु भी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। एक एक अणु में कृष्ण है, इसलिए सृष्टि का एक एक अणु कृष्ण की सेवा के लिए बना हुआ है। तो एक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग हमें इस ढंग से करना चाहिए कि हम ज्ञान को अर्जन करें। लेकिन दुर्भाग्यवश आत्मा अपने आप को शरीर समझता है और उस मिथ्या अहंकार के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्धि फिर मन के वश में आकर इन इंद्रियों को संतुष्ट करने में लग जाती है। जैसे कि पिछले श्लोकों में बताया गया कि इन 10 इंद्रियां ये पत्नियों के समान हैं और इनकी कितनी पत्नियां हैं? असंख्य पत्नियां हैं। असंख्य यानी कि असंख्य इंद्रियों के विषय हैं, असंख्य। इन आंखों से हम कितने सुंदर सुंदर रूप देख सकते हैं और कितने सुंदर रूप अभी देख चुके हैं। इन जीवा के द्वारा कितने सुंदर सुंदर व्यंजन हम खा चुके हैं। इस पूरे संसार में हम असंख्य विषयों से घिरे हुए हैं, भोग की वस्तुओं से घिरे हुए हैं। लेकिन जैसे कि कहावत है इंग्लिश में, वाटर वाटर एवरीवेयर बट स्टिल यू आर थर्स्टी, नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। तो वही हमारी हालत है कि विषयों के समुद्र में पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं। कितने विषय हैं
और कितने ही विषयों का आप भोग हम करते आए हैं, इस जन्म में नहीं कई हर जन्म में विषयों का भोग करते आए हैं, निम्न योनियों में रहे तब भी कितने ही विषयों का भोग कर लिया लेकिन फिर भी असंतुष्ट। विद्यापति कवि जी कहते हैं कि संसार में जो सुख है वो उसके समान है जैसे रेगिस्तान में एक पानी की बूंद किसको मिल जाए, बस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद। तो इस संसार में जो हमें सुख मिल रहे हैं उसकी क्या प्रकृति है, सीमित सुख और असीमित दुख। एक बूंद के समान हमें सुख मिलता है और उसके पीछे असीमित दुख, और उस एक बूंद और रूपी सुख को भी प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष, और उस एक बूंद सुख को प्राप्त करने के बाद इतना संघर्ष। वो भी फ्री में नहीं मिलती, वो एक बूंद सुख प्राप्त करने के लिए यू टू पे वेरी हैवी प्राइस, बहुत बड़ा दाम उसका चुकाना पड़ता है, बहुत बड़ा दाम। वो दाम क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। हो सकता है इस संसार में हमें बहुत ही जगत किसी का लगे संख्या की बहुत ही, ये तो जिसे कहते हैं बहुत ही प्रॉस्परस जीवन है इसका, सुख संपत्ति सब कुछ है इसके पास, गाड़ी बंगले सुंदर पत्नी धंधा वगैरह सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम वही होगा जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। तो इस मिथ्या अहंकार के कारण अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, अपने आप को हम कर्ता समझ बैठते हैं, और अपने आप को कर्ता समझना कमजोर बुद्धि की निशानी है। अगर हम बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से करेंगे तो बुद्धि का प्रयोग सही ढंग करने से हमें मालूम चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है। भगवान की तीन तरह की शक्ति है, अंतरंगा बहिरंगा, मैं तटस्था प्रकृति हूँ और मेरा असली स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना। तो ये बुद्धि होना सशक्त बुद्धि का निशानी है, लेकिन कमजोर बुद्धि होगी वो अपने आप को कर्ता समझेगा, भोक्ता समझेगा, और फिर वो तरह तरह का प्रयास करेगा और संघर्ष करता रहेगा, लेकिन आनंद से हमेशा बहुत दूर रहेगा। जितना ज्यादा हम प्रयास करेंगे भगवान से विमुख होकर आनंद प्राप्ति के लिए, उतना ही भगवान से हम दूर होते जा रहे हैं। कितनी भयंकर स्थिति है, और प्रयास कर रहे हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, भगवान से दूर होकर और दूर होते जा रहे हैं, और दूर होते जा रहे हैं। तो यहां पे आज के श्लोक में नाक दांत मस्तक और कानों का वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्ञान इंद्रियों का मुख्यतः वर्णन किया गया है कि किस ढंग से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आंखों के द्वारा हम सुंदर सुंदर रूप देखना चाहते हैं, वास्तव में इस जगत में कुछ भी सुंदर नहीं है। जो हमें सुंदर दिखाई दे रहा है, जो सुंदर चेहरे सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष हमें दिखाई दे रहे हैं, वो चलते फिरते एक मलमूत्र के थैले हैं, बस एक मलमूत्र के थैले को जितना मर्जी आप चमका लो। असली सुंदरता तो आत्मा की है, आत्मा असीमित रूप से सुंदर है, असीमित रूप से। तो उसकी सुंदरता का तो हम देख नहीं रहे और मलमूत्र के थैलों की सुंदरता को देख रहे हैं। वास्तव में जब भी हमें यह भ्रम हो कि यहाँ पे कुछ सुंदरता है तो हमें या तो शमशान घाट चले जाना चाहिए या किसी अस्पताल में चले जाना चाहिए, सारा का सारा भ्रम टूट जाएगा। अस्पताल में जाएंगे तो मालूम चलता क्या क्या सुंदरता है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई वहीं पे बिस्तर पड़े मलमूत्र त्याग रहा है ना, युवा व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति बच्चा व्यक्ति सबके सब दुखी हैं। तो भागवत में 11वें स्कंद में बताया गया है कि ये शरीर अपने आप में बहुत बड़ा गुरु है, ये बहुत बड़ा गुरु है। भगवान ने शरीर दुखदायी क्यों बनाया कि सीख जाओ, सीख जाओ, इसमें सुख नहीं मिलने वाला, जितना मर्जी प्रयास कर लो इसमें दुख ही दुख है, इसमें सुख नहीं मिल सकता आपको। तो भ्रमित मत हो, नहीं भ्रमित होना। तो इस संसार की सुंदरता को देखकर हम जिसे कहते हैं आंधे आंखें क्या होती हैं, चुंधिया जाती हैं। जब आंखें चुंधिया जाती हैं तो हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाते और हम भूल जाते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इस चकाचौंध से हमें भ्रमित नहीं होना। जैसे कि भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, जब भगवान बहुत छोटे थे तो उनको स्तनपान कराने कौन आई थी, पूतना आई थी, और पूतना बहुत ही सुंदर स्त्री बन के आए थे। ब्रजवासियों को लगा साक्षात लक्ष्मी देवी आ गई, बहुत ही सुंदर, और जब वो अंदर जाते किसी ने रोका भी नहीं, सबके सब पूर्ण रूप से मोहित हो गए। इसी ढंग से इस संसार कई पूतनाओं से भरा हुआ है, कई पूतनाओं से, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा है। हमसे पहले बहुत से लोग धोखा खा चुके हैं और हम भी बोले हमेशा धोखा खाते आए हैं। मैं याद आती है कि हमारे ऑफिस में एक मित्र थे, उनका विवाह हुआ और सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो बाकी लोग जो उनके मित्र थे तो बोल रहे थे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली, इतनी सुंदर पत्नी है। तो उस बेचारे का चेहरा लटक जाता था क्योंकि सच्चाई उसको मालूम है, दूर से हमें लगता है कि वह सुंदर पत्नी है, सुंदर पति है। जो व्यक्ति जिसको ये अवसर मिलता है उनके साथ रहने का, उनको मालूम चलता है क्या सुंदरता है, है ना। कोई बता रहा था कि इस विश्व की जो सबसे प्रसिद्ध मॉडल है सिडनी क्रॉफर्ड, सिडनी क्रॉफर्ड एक सबसे प्रसिद्ध मॉडल है। अगर आपके लड़कों के हॉस्टल्स वगैरह में जाएंगे उसके पिनअप्स, उसके पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, लोग तरह तरह के उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इसका संग कर सकूं। और किसी एक ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति का संग हो भी गया, उसने उसके साथ विवाह भी कर लिया, अब मालूम चला कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री उसकी पत्नी बन गई लेकिन फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है, वो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है उसका। तो वास्तव में बहुत बड़ा धोखा है। तो पूरा का पूरा विश्व पूतनाओं से भरा हुआ है और ये दिखा रहे हैं हम सुंदर है, आओ 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 सुख मिलेगा सुख मिलेगा। देखो ना वो पूतना किस रूप में है, टीवी के रूप में, चलचित्र के रूप में, इंटरनेट के रूप में, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, तरह तरह की स्कीम्स, तरह तरह के मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, आप चारों तरफ आप बात जाइए, सुंदर सुंदर मॉल्स हैं, इतनी अच्छी लाइटिंग है, कितना चकाचौंध है, आप देखिए बड़े बड़े हाईवे, पता नहीं क्या क्या, कितना चकाचौंध है बाहर की दुनिया में। ये सब पूतना के लिए, आओ आओ हम तुम्हें दूध पिलाएंगे, आओ हमारे पास आओ। लेकिन उसमें जहर भरा पड़ा है, जहर भरा पड़ा है पूरा। और जिस रंग से पूतना एक बाल कृष्ण को, गोपाल जी को दूध पिलाने आई थी, इसी ढंग से हम सबकी भक्ति अभी बहुत ही छोटी सी है। भक्ति लता बीज अभी बीज ही प्राप्त हुआ है, बीज ही प्राप्त हुआ है। तो अगर इन इस पूतना के चक्कर में फंस गए तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, निश्चित रूप से। सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट है, चलो क्या फर्क पड़ता है, कुछ खा लेते हैं, है ना, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी सर्फिंग कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक बार श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ किसी बीच पे जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में शायद, तो शिष्यों ने दिखाया प्रभुपाद सी ही सर्फिंग, वो समुद्र के ऊपर सर्फिंग कर रहा था। प्रभुपाद ने बोला इज नॉट सर्फिंग, ही इज सफरिंग, ही सफरिंग, ये अपने आप को आनंद पा रहा है, ये सर्फिंग कर रहा है, ये क्या है, इसको इस सागर से निकलना है, इससे सर्फ नहीं करना। तो हम इंटरनेट में जा रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कर लिया, 16 माला तो करता ही हूँ, 4 नियमों का पालन भी करता हूँ, थोड़ा बहुत हो भी गया, बैलेंस बनाना चाहिए, वो बैलेंस सारा बिगड़ जाएगा, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वो जो पूतना है इससे हमें बहुत ही सावधान रहना है। ये झूठे झूठे वायदे करते हैं, झूठे वायदे। इस संसार में अभी तक किसी को सुख नहीं मिला है, बिना कृष्ण भक्ति को किसी को सुख नहीं मिला है। तो ये दुस्साहस हमें नहीं करना चाहिए कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो बिना कृष्ण भक्ति के सुख पा लूंगा, नहीं मिला है किसी को, तो नहीं किसी को मिलेगा। तो इन पूतनाओं से हमें सावधान रहना है। कोई भी वस्तु जो ये कह रही कि आओ मैं तुम्हें आनंद दूंगा या दूंगी, कृष्ण से विमुख होकर उसको हमें पूतना समझना चाहिए और तुरंत सावधान होना चाहिए। हमें अपने वो कृष्ण समझ के उसका स्तनपान करना शुरू नहीं कर देना चाहिए, हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। तो हमें बहुत ही जिसे कहते हैं सचेत रहना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य देखिए, हमें इन संसार के इन पूतनाओं से आकर्षण हो जाता है और भगवान के सुंदर विग्रह से कोई आकर्षण ही नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। मंदिर में हम खड़े भी हैं राधिका रमन जी के सामने, फिर भी हमारा ध्यान एक पराई स्त्री की तरफ, पराई पुरुष की तरफ चला जाता है। पराई स्त्री, पराई पुरुष को देखना भी एक तरह का मैथुन है। ब्रह्मचार्य की परिभाषा में बताया गया है कि किसी स्त्री की तरफ देखना भी मैथुन है। इसी ढंग से पर पुरुष, पर स्त्री की तरफ देखना भी एक मैथुन है। संसार में हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए बनी है, आपके भोग के लिए, हमारे भोग के लिए नहीं बनी है। और जो मैथुन है वो कृष्ण के प्रति द्वेष की परिकाष्ठा है, उच्चतम द्वेष है, उच्चतम द्वेष। तो ये मनुष्य जीवन भगवान के प्रति द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं है, प्रेम बढ़ाने के लिए। हम लोगों को बुद्धि का सही प्रयोग कर रहे हैं जीवन, इस बुद्धि का उपयोग करना है। ज्ञान इंद्रियों, ये आंखें मिली हैं भगवान के सुंदर दर्शन करने के लिए। जब गोपियां भगवान का प्रतीक्षा करती थी कि भगवान कब वापस आएंगे, और जब भगवान गायें चलाकर वापस आते थे और उनके बालों में मिट्टी लगी हुई है, सर पे मोर का पंख है, बंसुरी बजाते हुए गाल वालों के साथ खेलते हुए, तो गोपियां देखती रह जाती थी और बोलती थी यही आंखों की सार्थकता है कि हम कृष्ण के रूप का दर्शन करते रहे। तो आंखें जो भगवान ने दी है ज्ञान, ये ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण के भक्तों का दर्शन करने के लिए। किसी भी स्त्री और पुरुष इस संसार को देखकर हमारे जो हमें एक दिव्य अनुभूति कभी भी नहीं होगी, क्योंकि एक सुंदर स्त्री का दर्शन कर लिया दिव्य अनुभूति हो गई, कभी नहीं होगा ऐसे। जब चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर पुरुष जी के दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि आपके दर्शन मात्र से ही मैं कई पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तो ऐसा किसी बद जीव के दर्शन से नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा कि आपके दर्शन से मेरे कई पीढ़ियां नरक में चले गई और मैं भी नरक में चला गया। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। जब हम काम वासनाओं से वशीभूत होकर किसी स्त्री पुरुष का दर्शन करते हैं तो छाप हमारे मन के अंदर पड़ जाती है, और जो छाप मन के अंदर पड़ जाती है वो एक इच्छा के रूप में रह जाती है, और उसके लिए हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ता है, और फिर उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें पाप करना पड़ता है, फिर हमें नर्क में जाना पड़ेगा। इतना इतना खतरनाक है। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, एक पुरुष स्त्री को देखते बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। अरे लव एट फर्स्ट साइट नहीं है ये, आफ्टर मैनी मैनी साइट्स, बहुत बार आपने देखा 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 देखा, कई जन्मों से देखा, फिर मन में एक छाप पड़ गई, और जब छाप पड़ी फिर आपने देखा, मन ने बोला हाँ इससे मेरी इंद्रतृप्ति पूरी हो जाएगी, उसने भी कहा इससे मेरी इंद्रतृप्ति पूरी हो जाएगी, फिर हमें लगता है एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइट नहीं है ये, कई जाओ हमें मालूम ही नहीं चलता। ये इतना सूक्ष्म विज्ञान है, इतना सूक्ष्म विज्ञान है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसके द्वारा हमारे मन में छाप बनती जा रही है, एक डाई बनती जा रही है, उस डाई के अनुसार हमारा अगला शरीर तैयार होता जा रहा है, और अगले कई शरीर पहले से तैयार हो गए, क्योंकि हम चाहते हैं उच्चतम इंद्रतृप्ति, लेकिन हम उसको डिजर्व नहीं करते। उसके लिए हमें परे पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, तो हम डिजर्व करते नहीं, तो फिर कुत्ते बिल्ली सुअर का शरीर मिलेगा। तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए किन लोगों के संग में हैं हम, बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इस बुद्धि का उपयोग करना है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन के लक्ष्य से भ्रमित होने के लिए नहीं, भ्रष्ट होने के लिए नहीं। हम इतना दुर्भाग्य है हमारा कि भगवान के विग्रह के सामने खड़े होते हुए भी हमें उनके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि मन दूषित विचारों से भरा हुआ है, दूषित दूषित छापे अंदर पड़ी हुई हैं। हमारी वही हालत है कि एक सुअर के आगे मिस यूनिवर्स आके खड़ी हो जाए तो बोलो एक सुअर और इस तरह उसकी मिसेस सुअर है, बोले कौन ज्यादा सुंदर है, बोले जो पूछने का प्रश्न है, निश्चित रूप से मिसेस सुअर ज्यादा सुंदर है। उसके आगे मल भी पड़ा हो, रस मलाई भी पड़ा हो, वो तो मल को ही खाएगा। तो हमारी भी यही हालत है, मन दूषित विचारों से भरा पड़ा है। कृष्ण सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित कर लेते, हमें ही नहीं करते, बस कुछ स्पेशल जीव है हम लोग, क्योंकि मन में कलमश भरा पड़ा है। कृष्ण की भगवत्ता इसमें नहीं है कि उन्होंने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की है, कृष्ण की भगवत्ता इसमें है कि उन्होंने असंख्य जीवों को असंख्य समय तक अपने प्रति आकर्षित करके रखा हुआ है, ये है कृष्ण की भगवत्ता, और कोई भी जीव नहीं कर सकता। किसी भी जीव के प्रति हम आकर्षित होंगे, कुछ समय के बाद हम बोर हो जाएंगे, हम कुंठित हो जाएंगे, उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो कृष्ण है वो सर्व आकर्षक है, सर्वदा सर्व आकर्षक है, और प्रत्येक जीव के लिए सर्व आकर्षक है। जब कृष्ण की बंसुरी की ध्वनि बछड़े भी सुनते थे तो बछड़े दूध पीना बंद कर देते थे और गायों की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते थे, जमुना नदी बहते बहते रुक जाती थी, पेड़ रोना शुरू कर देते थे और उनका जो आंसू है वो शहद के रूप में टपकता है, गोपियां जैसे कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुनती है सब कुछ छोड़ के भाग रही है। तो इतना आकर्षक है कृष्ण, सर्व आकर्षक। तो हमारे जीवन का लक्ष्य उस आकर्षण को पैदा करना, और इसके लिए हमें कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होना चाहिए, कुछ भी सेक्रीफाइस। इस संसार में कोई भी वस्तु इतनी योग्य नहीं है कि वो मेरे और कृष्ण के बीच में आए। कोई भी धन, कोई भी हमारा जो धंधा, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री इस योग्य नहीं है कि जो मेरे और कृष्ण के आकर्षण के बीच में बाधा बने। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना है। तो इस बुद्धि का उपयोग हमें इस ढंग से करना है कि प्रति क्षण हम कृष्ण के प्रति आगे बढ़े, पीछे ना हटे। पिछले श्लोक में लिखा हुआ है कि बुद्धि को हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, हिंदी में लिखा था, यहां पे है कि नवीन रहना चाहिए। तो बुद्धि को हमेशा नवीन कैसे रहेगी, जब परम नवीन कृष्ण हमेशा इसमें प्रवेश करते रहेंगे। तो कैसे प्रवेश करेंगे, इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करेंगे, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जीवा के द्वारा, गंध के द्वारा। तो इन सारी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग इस ढंग से करना है कि कृष्ण हमेशा प्रवेश करें। हम जीवा के द्वारा तो केवल प्रसाद खाते हैं, आंखों के द्वारा भी केवल प्रसाद लेना है। प्रसाद यानी कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के दर्शन, और कृष्ण के भक्तों के दर्शन भोग की इच्छा से नहीं, सेवा की इच्छा से। तो हर इंद्री में हमें प्रसाद डालना है, कृष्ण को डालना है। तो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार होना चाहिए। और सबसे बड़ा कृष्ण का प्रसाद है क्या, सबसे बड़ा कृष्ण का प्रसाद है भक्तों का संग। तो इन भक्तों को, संग को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी त्यागने को तैयार होना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग का अर्थ क्या है, बुद्धि का प्रयोग का अर्थ है जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नहीं तो हम तोते की तरह रह जाएंगे कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, कृष्ण परम भगवान है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और भोग किए जा रहे हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके मुझे इसको सेवा में लगाना है, तभी बुद्धिमान कहलाएंगे, तभी बुद्धिमान कहलाएंगे। तो बुद्धि का उपयोग यही है कि हम ज्ञान को सही ढंग से इसका उपयोग करें। जो ज्ञान है, जो सिद्धांत है, वो एक नक्शे के समान है, मैप की तरह है। मैप हमें अपने आप अपने लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, उसको मैप को प्रयोग करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। तो उस मैप का हमें सही प्रयोग करना है, ज्ञान का सही प्रयोग करना है। सब कुछ हमें मालूम है कि केवल प्रसाद खाना चाहिए, फिर भी हम कभी भी कुछ खा लेते हैं, बस कभी भी स्लिप हो गए, कभी भी खा लिया। मालूम है कि पर स्त्री पर पुरुष की तरफ नहीं देखना चाहिए भोग की इच्छा से, फिर देख लेते हैं। मालूम है कि हरे कृष्ण महामंत्र सबसे मुख्य प्रार्थना है और इसको प्रार्थना के रूप में करना चाहिए, फिर भी सोते हुए, बिना उदासीन होकर, रोते हुए, कब क्लेश समझ के इसको पूरा करते हैं। तो क्या बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, क्या बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं? बुरा मत मानिए, सरल भाषा में कहते हैं पढ़े लिखे गवार, सब कुछ पढ़ लिया लिख लिया लेकिन कुछ सीखे नहीं। तो हम सबको इतनी, हमने शास्त्रों का श्रवण कर लिया, इतना शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, इतनी कक्षाएं कर ली, उसके बाद वहीं के वहीं, वहीं के वहीं काम क्रोध लोभ वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, और कोई प्रयास भी नहीं करे कि इनसे मुक्ति पाए। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना काम क्रोध लोभ मोह मत करके हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये अनर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिना काम और क्रोध के हमारा जीवन ही कुछ नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको त्यागना है, इसको हमें त्यागना चाहिए। तो जिस ढंग से एक बीमार व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, उसी ढंग से एक साधक को चिंतित रहना चाहिए कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, क्या कर रहा हूं मैं, क्यों मेरी इच्छाएं कम नहीं हो रही, क्यों मेरे भौतिक आकर्षण कम नहीं हो रहे, कहां गलती कर रहा हूं, कहां पे अपराध कर रहा हूं। तो बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए हमें। तो ये बुद्धि कई शाखाओं में बंटी हुई है, कई शाखाओं में, क्योंकि इंद्रियों के असंख्य विषय हैं और असंख्य विषयों की पूर्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, व्यवसात्मिका बुद्धि, सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस। व्यवसात्मिका, व्यवसात्मिका मतलब कि व्यवसाय, बिजनेस, केवल बिजनेस से कंसर्न, बस और कुछ नहीं। जैसे एक बनिया होते हैं, जो एक बिजनेसमैन होते हैं, लालाजी होते हैं, वो वही काम करेंगे जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, जिसमें मेरे बिजनेस में हानि हो रही है नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। इसी ढंग से हमें वैसात्मिक का बुद्धि होना है। हमारा बिजनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस ये मेरा बिजनेस है। तो हर कार्य वैसात्मिक का बुद्धि से, हर कार्य कि इस कार्य को करने से भक्ति में आगे बढ़ूंगा, ये पीछे होऊंगा, बस। तो इस वैसात्मिक का बुद्धि से हमने चलना है। और ये वैसात्मिक का बुद्धि अभी हमारे में उत्पन्न नहीं होगी, इसको हमें उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सख्ती से नियमों का पालन करना पड़ेगा, सख्ती से। अभी तो हमारे इंद्रियां प्रबल हैं, भागेंगे इधर इधर उधर, तो कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? सख्ती से नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो जो श्री प्रभुपाद जी ने ये मॉर्निंग प्रोग्राम का पैकेज दिया है, इवनिंग प्रोग्राम का पैकेज दिया है, और जो श्री प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बिल्कुल इसको बिना किसी डेविएशन के हमें पालन करना चाहिए, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो या ब्रह्मचार्य आश्रम में हो। हमें ये भी सोचना चाहिए कि सारे नियम खाली ब्रह्मचारियों के लिए बने हैं, वास्तव में हम सबको ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी का अर्थ है ब्रह्म में आचरण करना, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना। किसी को भी छूट नहीं है शास्त्रों के विरुद्ध चलने की। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अर्थ नहीं है कि लाइसेंस मिल गया हम शास्त्रों के विरुद्ध चल सकते हैं। हर स्थिति में, हर आश्रम में हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करना। बुद्धि का हमेशा इस ढंग से उपयोग करना चाहिए कि मैं हर क्षण कृष्ण का स्मरण कर सकूं, हर इंद्री पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगी रहे। चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, घर का काम कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, हर क्षण मुझे कृष्ण का स्मरण करना है। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्योंकि एक भक्त के लिए अगर वो एक क्षण भी कृष्ण को भूल गया, ये मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। भक्त को मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन कृष्ण को भूलना मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। कि जिस क्षण को मैं कृष्ण को भूल गया, उस क्षण के जो रिएक्शन है मुझे पाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैंने विकर्म किया ही होगा उस क्षण में, और फिर वो मेरे भगवत धाम जाने का एक रोड़ा बन जाएगा। क्योंकि जब तक पूरा अकाउंट क्लियर नहीं होगा, भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। तो प्रति क्षण मेरे जीवन को इस ढंग से मुझे ढालना है कि मैं कृष्ण का स्मरण कर सकूं। तो अपने ज्ञान इंद्रियों को इस ढंग से उपयोग करना है कि हमेशा मैं कृष्ण का स्मरण कर सकूं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें नियमों का पालन करना है। फिलॉसफी जानने का, ज्ञान अर्जन करने का एक अर्थ ये है कि हम हमेशा सावधान रहें, हमेशा सावधान रहें, हमें डरना चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि एक हर किसी भक्त की ये निशानी है। बोले वैष्णव के क्या लक्षण है? बोले वैष्णव के ये लक्षण है कि वो हमेशा गिरने से डरेगा, कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे मैं एक माला कर रहा हूं छूट ना जाए, चाहे 16 माला कर रहा हूं छूट ना जाए, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसको डरना चाहिए कि जो ये मुझे धन प्राप्त हो गया ये हाथ से निकल ना जाए। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना है, बहुत सावधानी पूर्वक। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये एक बहुत ही रेजर की तरह है, तीखे नुकीले ब्लेड की तरह है। इसका सावधानी से उपयोग नहीं किया तो खून निकल आएगा। बहुत ही सावधानी से इसका उपयोग करना है हमने, सारे के सारे अनर्थों को काटने के लिए। तो मनुष्य जीवन बहुत ही सचेत रहने के लिए मिला है, और हमें प्रयास करें कि अभी हमारी बुद्धि जब तक दिव्य नहीं हुई है, तो कम से कम सत्वगुणी स्तर में तो बुद्धि आ ही जानी चाहिए। भगवद गीता के 18 अध्याय में भगवान बताते हैं कि तीन प्रकार की बुद्धि होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सत्वगुणी बुद्धि के क्या लक्षण है? तो 18वें अध्याय का 30वां श्लोक है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च यावेति बुद्धि सापार्थ सात्वकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है क्या करनीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है। तो ये देखिए, प्रति क्षण हमें कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए। बुद्धि का उपयोग हम क्या करते हैं? डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हम ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हम जानते नहीं क्या निर्णय लें, क्या ठीक है क्या गलत है। तो निर्णय लेने का आधार हमारे जीवन का ये होना चाहिए कि क्या करनी है क्या करनी है नहीं है, तो क्या करनी है हमारे लिए? वो करने कार्य हैं जो कि गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हों, और जिससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे, चाहे वो दिखने में कितना ही आकर्षक कार्य क्यों ना हो, उसको हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। तुरंत सोचना भी नहीं चाहिए, तुरंत त्याग देना चाहिए। गोपियां तुरंत अपना घर बार छोड़ के आ जाती थी, और जब हम कृष्ण के लिए कुछ त्यागते हैं तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ है। कृष्णा भक्ति में एक लाभ ही लाभ है, इट्स ऑल ऑस्पिशियस, शुभ ही शुभ है, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और जब तक हम उसको छुपा के रखेंगे, कृष्ण की शरणागत नहीं होंगे, हम हमेशा भयभीत रहेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। तो क्या करनी है? वही करनी है जो कि गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करे। और क्या नहीं है? ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे गुरु और कृष्ण अप्रसन्न हो। तो देखिए, हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं कि हमें वैष्णव के प्रति बहुत ही प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, फिर भी खुले आप बिना किसी बंधन के हम वैष्णव अपराध किए जाते हैं। वैष्णव अपराध करना हमारी प्रकृति बन गई है, मन से तो खटाखट अपराध ही अपराध, अपराध ही अपराध होते जा रहे, होते जा रहे, और कभी हम सोच भी नहीं रहे इसको रोकें, तो बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर रहे। अगर हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु साफ साफ कह रहे हैं कि वैष्णव अपराध पागल हाथी के समान है, आपकी भक्ति लता बीज को रोंद के चले जाएंगे, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूंगा। यानी कि भगवान के मत के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब भगवान के मत पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब हमारे लिए भगवान है ही नहीं, इससे बड़ा हमसे बड़ा कोई नास्तिक ही नहीं है। फिर क्या दीक्षा ले ली, क्या माला कर रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं, सोचें इस बात को, क्या कर रहे हैं फिर हम? इतना कुछ सुनने के बाद बदलना नहीं हमने अपने आप को, हम तो वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, तो इसका मतलब कोई विश्वास ही नहीं है, ना भगवान की वाणी में विश्वास है। भगवान गीता में साफ साफ कह रहे हैं, अगर नहीं सुनोगे अहंकार वश तो आपका नाश हो जाएगा। तो वही होगा कि अहंकार वश हम नहीं सुनेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा नाश होगा। तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए, नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना। सभी वैष्णवों को, सभी जीवों को आदर देना है, ये सतोगुणी बुद्धि है कि सभी जीवों को मुझे आदर देना है। किससे डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए हमें? माया से, पूतना से डरना चाहिए, और सबसे बड़ी माया हमेशा करती है हमारे मन में, मन से हमें डरना चाहिए, मन की बात बिल्कुल नहीं माननी। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु, तो उसकी बात नहीं माननी। और किससे नहीं डरना चाहिए? भगवान की शरणागत, गुरु की शरण ग्रहण करने में नहीं डरना चाहिए, भक्तों की सेवा करने में नहीं डरना चाहिए। मां शुचा, भगवान कह रहे हैं मां शुचा, डरो मत, शरण ग्रहण करो। क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है? क्या बांधने वाला है? ये बांधने वाला मैं और मेरा, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, और फिर हम इसमें चले जाते हैं कि ये मैं और मेरा, अहम माम देति। तो इससे बाहर निकलना है। भक्ति श्याम सभी ठाकुर महाराज कहते हैं ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि ये सोचना ये मैं और मेरा परिवार, ये पूरा वासुदेव कुटुंबकम, पूरा का पूरा परिवार कृष्ण का परिवार है। अगर हम ये सोचते हैं, आप देखिए, अगर केवल मैं और मेरा परिवार के चक्कर में ही रहेंगे तो हमारे कितने रिश्तेदार होंगे? गिने चुने 10-15-20-25 रिश्तेदार होंगे। लेकिन हम कृष्ण के परिवार में सम्मिलित हो जाएंगे तो असंख्य रिश्तेदार हैं हमारे, असंख्य संबंधी हैं, असंख्य जीवों के साथ आप प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हो। लेकिन अगर मैं और मेरा के चक्कर में हमने अपने आप को संकुचित कर लिया तो कुछ गिने चुने लोगों के साथ भी हम तथाकथित प्रेम का आदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम कृष्ण का परिवार में सम्मिलित करेंगे अपने आप को, तो असंख्य जीवों के साथ हम प्रेम का आनंद आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम सतोगुणी बुद्धि के स्तर पर रहें, और जब सतोगुणी बुद्धि के स्तर पर रह के हम साधना करेंगे तो भगवान कह रहे ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंत, और फिर भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। और फिर हमारी बुद्धि दिव्य होगी। और ये है सतोगुणी बुद्धि। जो रजोगुणी बुद्धि क्या है? रजोगुणी बुद्धि यह है कि जो धर्म अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मालूम नहीं, कंफ्यूजन है, तो ये राजसी है। और तमोगुणी बुद्धि क्या है? जो बुद्धि मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। सदैव विपरीत दिशा में जाएगी, वो तामसी बुद्धि कहलाएगी। तो हमारे को तामसी और रजोगुणी बुद्धि को त्याग करके अपनी बुद्धि को हमें सतोगुणी करना है। और सतोगुणी बुद्धि हम तभी कर पाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करें, और ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग हम सही चेतना में करें, भक्तों की सेवा करें और हमेशा कॉशियस रहें, सावधान रहें, हमेशा सावधान रहें। वंदो मोई सावधान मते, बहुत ही सावधान रहना चाहिए हमें भक्ति के मार्ग पे। यही बुद्धि का सही उपयोग है। बुद्धि के सही उपयोग का अर्थ ही यही है कि बहुत सावधानी से कार्य करें। माया बहुत ही प्रबल है, बहुत प्रबल है। सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारा का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, एक क्षण में हम सारा ज्ञान भूल जाएंगे माया के आगे आते ही, एक क्षण में। माया चाहती है, माया की दो शक्तियां कि कृष्ण को भुला देना और हमारे ज्ञान को ढक देना। तो एक क्षण में हम भूल जाएंगे सारी की सारी फिलॉसफी, सारे के सारे श्लोक, सब कुछ हमें याद होगा, नहीं सब भूल जाएंगे। तो बहुत सावधान रहना है, बहुत ही सावधान। कभी भी अपने आप को बहुत पहलवान नहीं समझना हमें कि हम तो पहलवान हैं, हम माया का मुकाबला कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार व्यास आसन में बैठ के बोला कि मैं कभी भी माया के जंगल में नहीं फंसूंगा, है ना। और ये कह के प्रभुपाद जी नीचे उतर गए व्यास आसन से, और फिर प्रभुपाद जी प्रार्थना करने लगे। तो किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप तो कहते हैं भक्तों को डरना चाहिए और आप कह रहे हैं कि माया के जंगल में मैं कभी नहीं फंसूंगा, आपकी क्या है? प्रभुपाद ने बोला, बिल्कुल सही बात है, मैं इसलिए बोला माया के जंगल में क्यों नहीं फंसूंगा कि प्रतिदिन मैं यही प्रार्थना भगवान से करता हूं कि मुझे बचा के रखो माया से। तो प्रतिदिन हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि मुझे माया से बचा के रखो। कभी भी अपने आप को ये सोचना चाहिए कि अब तो मैं काफी सशक्त हो गया हूं, अब मैं बच गया हूं, मैं बहुत ही सेवा कर रहा हूं, कभी भी नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे माया प्रवेश करेगी हमें मालूम नहीं चलेगा। तो इन्हीं ज्ञान इंद्रियों को जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण में नहीं रखेंगे तो माया प्रवेश कर जाएगी। पूर्ण रूप से कृष्ण में होने चाहिए। कानों के द्वारा केवल कीर्तन सुने, नाक के द्वारा केवल कृष्ण को अर्पित किए फूलों को सूंघे, और आंखों के द्वारा केवल कृष्ण के दर्शन करें, और आंखों के द्वारा भगवान की देवी दिव्य वाणी भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करें। भागवतम में बताया गया है कि प्रत्येक ग्रस्त को प्रतिदिन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके ही हम जो हमारे ऋषिगण हैं उनके प्रति जो हमारा ऋण है उसको हम चुकता सकते हैं। प्रत्येक दिन हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, प्रतिदिन। तो हम ग्रंथों का सही ढंग से अध्ययन करेंगे, भक्तों का सही ढंग से संग करेंगे, तो हमारी बुद्धि नियमों का पालन करेंगे तो हम व्यवसायत्मिक बुद्धि के स्तर पर आ सकते हैं, सतोगुणी बुद्धि के स्तर पर आ सकते हैं। बुद्धि हमेशा फ्रेश नवीन रहेगी, और फिर हम इन ज्ञान इंद्रियों का उपयोग कृष्ण की सेवा में करेंगे और फिर हम विचलित नहीं होंगे। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी हो? एनी क्वेश्चंस? अपराध तो अपराध है, मन से अपराध करेंगे फिर धीरे धीरे वाणी से, फिर धीरे धीरे एक्शन में भी आ जाएगा। तो अपराध तो रोकना ही है। तो देखिए वही बात है, जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ, उसके अंदर दूध नहीं डाल सकते, तो उसको हमें खाली कर, मन को हमें कृष्णमय बनाना पड़ेगा। तो जितना कृष्णमय बनाएंगे, जितना कृष्ण के विषय में सोचेंगे, थिंकिंग फीलिंग विलिंग कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के विषय में, उतना हमारा ये जो द्वेष है वो समाप्त होगा। अपराध हम द्वेषपूर्वक करते हैं, तो जितना हम अपने मन को कृष्णमय बनाएंगे उतना हमारा द्वेष समाप्त होगा और अपराध होना कम होंगे, है ना। और दूसरा, हम सब भक्तों को संग इस ढंग से करना चाहिए कि हम भक्तों के समाज में आए, तो अगर एक भक्त अज्ञानतावश कुछ निंदा कर रहा है तो दूसरे भक्त उसको उत्साहित नहीं करना चाहिए निंदा करने के लिए। क्योंकि निंदा में जो रस मिलता है हम स्तब्ध हो जाते हैं बिल्कुल। हम चाहते हैं हजारों कान होने चाहिए थे, हजारों जीवा होने चाहिए थे निंदा करने के लिए, निंदा सुनने के लिए। एकदम रोमांच उत्पन्न होते हैं और स्तब्ध हो जाते हैं। लेकिन हमें बुद्धि का प्रयोग करना है फिर, ये गलत है। और फिर हमें उत्साही नहीं करना किसी को कि और निंदा करें, फिर इस ढंग से हम बच सकते हैं। प्रभु जी का प्रश्न है कि कभी ये सोचना चाहिए कि सेवा अच्छी चल रही है तभी माया प्रवेश करेगी, तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कब तक चलता रहेगा ये? बिल्कुल, बहुत लंबी स्ट्रगल है, बहुत लंबा संघर्ष है। ये मत सोचिए चैंट एंड बी हैप्पी से काम चल जाएगा। चैंट एंड बी हैप्पी से काम चलेगा, लेकिन वो चैंटिंग करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत लंबा संघर्ष है। क्योंकि भौतिक जगत तो संघर्ष के लिए है, भौतिक जगत में संघर्ष ही संघर्ष है ना। कृष्ण से विमुख हुए हैं तो फिर सजा तो उठानी पड़ेगी हमें, शुद्धिकरण तो करना ही पड़ेगा अपने आप, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, तो चलता रहेगा। उच्चतम अवस्था में आने के बाद भी प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवत के तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी सेवा करने के बाद भी किसी भी क्षण हम गिर सकते हैं, तो बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति होगी भजन क्रिया से गुरु के आदेशों का पालन करके। गुरु का आदेशों का पालन करना चाहिए वैसे आत्मिक का बुद्धि से कि गुरु के आदेश ही मेरे पूरा जीवन है। गुरु का आदेश कोई साइड बिजनेस नहीं होना चाहिए, गुरु के आदेश हमारे मेन बिजनेस होना चाहिए, तभी यह व्यास आत्मिक का बुद्धि, इनफैक्ट ओनली बिजनेस होना चाहिए। जब गुरु के आदेशों को साइड बिजनेस में रखेंगे तो फिर अनर्थों की निवृत्ति नहीं होगी, ओनली बिजनेस। क्योंकि और जितने भी व्यवसाय हैं इस संसार में सबके सब क्षण भंगुर हैं, और जितने भी व्यवसायों से जो भी लाभ प्राप्त होगा सब क्षण भंगुर है। लेकिन जो गुरु की सेवा का व्यवसाय है ये सनातन व्यवसाय है, ये सनातन सेवा है, एटर्नल ऑक्यूपेशन। तो बुद्धि का प्रयोग क्या है? जो एक बढ़िया बिजनेसमैन अपने धन को इन्वेस्ट करता है वो इस शेयर में इन्वेस्ट करता है जिसमें लाभ प्राप्त हो, ऐसी कंपनी में पैसा डालेगा जो कि आगे लंबे समय तक चलेगी। ऐसी कंपनी में कोई पैसा नहीं डालेगा मान चले कल ही खत्म होने वाली है, कभी किसी भी समय गिर सकती है। कोई भी व्यक्ति उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेगा मान चले अभी गिरने वाली है, किसी भी समय गिर सकती है कंपनी, उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो हमें मालूम है कि सनातन ऑक्यूपेशन यही है कि गुरु की सेवा, तो यही हमारा केवल बिजनेस होना चाहिए बस, तब अनर्थ निवृत्ति होगी। और जब तक ये केवल साइड बिजनेस रहेगा कि सब बिजनेस के साथ थोड़ा बहुत अकोमोडेट करते हुए चलते रहे तो साथ साथ अनर्थ भी चलते रहेगा, चलता ही रहेगा, अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाएगी। पता ही नहीं चल पाता है, प्रभु जी का प्रश्न है कि मन के स्तर पे है कि बुद्धि के स्तर पे है, तो क्या ठीक है क्या गलत है पता नहीं चल पाता। ये रजोगुण का लक्षण है, ये रजोगुण का लक्षण है। तो हम अपने जीवन को सतगुणी बनाना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, है ना, सतगुणी जीवन बनाना पड़ेगा। केवल प्रसाद पाना, बस केवल प्रसाद, भक्तों का सही ढंग से संग करना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, उससे हम सतगुण में आएंगे नियमों का पालन करके। तो अगर हम ऐसी अवस्था में हैं तो क्या करना चाहिए? उपदेशामृत में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं उत्साह निश्चय धैर्य, कि हमें सारे कार्य बड़े उत्साह से करने चाहिए। उत्साह की परिभाषा श्री प्रभुपाद ने दी, क्या परिभाषा उत्साह की? एंडेवर्स विद इंटेलिजेंस, कि सारे के सारे कार्य कर रहे हैं बुद्धि से। तो बोले किसकी बुद्धि? हम तो बद्धजीव हैं, हमारी बुद्धि तो भ्रमित है, तो गुरु और कृष्ण की बुद्धि। तो अगर हम कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या ठीक है क्या गलत है, तो भगवान के प्रतिनिधि किस लिए हैं? उनकी बुद्धि का हम प्रयोग करें, उनकी बुद्धि के अनुसार जीवन को चलाएं। तो गुरु की बुद्धि के अनुसार कार्य करने से हमारी बुद्धि फिर सत्वगुणी हो जाएगी। ठीक है, भाव जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि माया कभी भी प्रवेश कर जाएगी, लेकिन हम तो प्रचारक लोग हैं, सीधा माया से फ्रंट में जाके हम छेड़खान कर रहे हैं, उसको लड़ाई कर रहे हैं, तो कैसे बचे रहे माया से, है ना। बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसके लिए क्या बताया गया, प्रभुपाद जी ने बताया, भक्ति सही ठाकुर महाराज ने बताया कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, सेवा करते हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं कि हमेशा साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सेवा के साथ साथ हम ये हरे कृष्ण कीर्तन अवश्य करते रहे, सेवा के बीच में हम प्रजल्पा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माया प्रवेश कर गई। सेवा के बीच में आगे बढ़ने की भावना, मिथ्या अहंकार दिखाना, है ना, अपने आप को कर्ता करना, तो माया प्रवेश कर गई। जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे जयानंद प्रभु, तो अपने आप को सेवा में इतना बिजी रखते थे, इतना बिजी रखते थे, तो कोई बता था, कोई भक्त आपकी निंदा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, समय क्या करने दो, समय नहीं मेरे पास कि इससे कुछ सोचने के लिए, बिल्कुल टाइट, हमने आपको बिल्कुल टाइट शेड्यूल रखना है और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है, तो माया प्रवेश नहीं करेंगे, माया बिल्कुल प्रवेश नहीं करेंगे। कृष्ण रक्षा करते हैं, अगर माया स्ट्रांग है तो कृष्ण मायाधीश है, कृष्ण माया के स्वामी है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे, कौंतेय पति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र ऐलान कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, लेकिन हमें भक्तों की तरह व्यवहार करना पड़ेगा, सच्चे भक्त की तरह एक इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी कृष्ण से कि मैं माया से बचना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इच्छा जाहिर करनी, निश्चित रूप से कृष्ण रक्षा करेंगे। कई बार हम सुनने के बाद ये अप्लाई नहीं कर पाते, तो ये क्या है, पिछले जन्मों के कुछ पाप हैं, यही प्रश्न है ना आपका, पिछले जन्मों की भक्ति कारण अप्लाई करते हैं और पिछले जन्मों के पाप के कारण अप्लाई नहीं कर पाते, तो दोनों ही बातें हैं कि जब पिछले जन्मों की भक्ति होती है तो हमारा स्वतः ही आकर्षण होता है फिर से, और कई बार पिछले जन्मों के पाप इतने इकट्ठे हुए होते हैं कि उनको खत्म करने में समय लगता है, लेकिन भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, और अगर हम तीव्रता से भक्ति करेंगे और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पिछले जन्म की, इस जन्म तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये सारा डेबिट अकाउंट गड़बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है, और हर कोई ऐसा सोचने लगा तो हर कोई सुस्त हो जाएगा कि इस जन्म तो मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, ये डेबिट अकाउंट इतना मैं क्या करें। हमें तो ये सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ा क्रेडिट मिल गया मुझे, बहुत बड़ा क्रेडिट मिल गया, अब मुझे, अब क्योंकि कंट्रोल मेरा प्रेजेंट एक्शंस में है, पीछे जो हो गया मुझे नहीं मालूम, केवल कृष्ण जानते हैं, कंट्रोल खाली मैं इस समय प्रेजेंट को कर सकता हूँ, तो इस समय कोई गलती ना करूँ बस, और कृपा की याचना करता रहूँ। तथ्य अनुकंपा सुसूक्ष्म मानो भुंजन एवात कृतम विपाकम हिदवाक वी विद्वान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पाप से दाय पाक, कृपा की प्रतीक्षा करते रहें, और जो भी हमारे पर कष्ट आ रहे हैं, जो भी बार बार रिवर्सल हो रहे हैं, उसको सहते रहें और कृपा की प्रतीक्षा करते रहें, याचना करते रहें और अपनी सेवा में कमी ना आने दें, तो निश्चित रूप से ऐसे भक्त का भगवत धाम जाने का अधिकार बन जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि मेरी भक्ति में बाधा पड़ रही है पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, ये सोचना ठीक नहीं है, रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, अगर पिछले जन्म में कुछ भी किया तो हमने किए हैं, अब मौका मिल रहा है उसको ठीक करने का, तो अब कोई कमी ना छोड़े। बाद में उत्तर दे रहे क्लास के बाद, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथा श्रीमद भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गोत्रे वनंदे।